भगवते वासुदेवाय इससे पहले कि हम ये श्लोक लें, आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है, श्रीमती ललिता देवी का आविर्भाव दिवस है। श्रीमती ललिता देवी आविर्भाव तिथि महोत्सव की, तो सबसे पहले हम थोड़ा इनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो श्रीमती राधारानी के नाना प्रकार की सखियां हैं, उसमें मुख्य जो 8 सखियां हैं उनको परम प्रेष्ठ सखी कहा जाता है। सखी के अलग अलग कैटेगरीज हैं, मेड सर्वेंट जो हैं श्रीमती राधारानी की कैटेगरीज बनाए गए हैं। श्रील रूप गोस्वामी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है उज्ज्वल नीलमणि में। पहला बता रहे हैं श्रील रूप गोस्वामी सखी, और फिर बता रहे हैं नित्य सखी, और फिर हैं प्राण सखी, और चौथे में आते हैं प्रिय सखी, और पांचवें नंबर पे हैं परम प्रेष्ठ सखी। तो परम प्रेष्ठ सखी ये 8 गोपियां हैं, प्रमुख गोपियां। और इसमें ललिता जी, विशाखा जी, चित्रा, इंदुलेखा, चंपकलता, रंगदेवी, तुंग विद्या, सूर्य। और याद करने का भी बड़ा आसान तरीका है, कई बार हम लोग याद करना दिक्कत हो जाता है कि इस तरफ कौन है, इस तरफ कौन है, इसके बाद किसका नंबर आएगा। तो की वर्ड्स की लेटर्स से हम लोग याद कर सकते हैं, है ना। तो इस तरफ राधारानी के साथ में जो खड़ी है वो खड़ी है, कौन खड़ी है, हाँ कौन खड़ी है, नहीं नहीं राधारानी के साथ में, राधारानी के साथ में, राधारानी के साथ में कौन खड़ी है, विशाखा जी खड़ी है, ठीक है। और विशाखा जी के बाद कौन है, इंदुलेखा, उसके बाद है रंग देवी, उसके बाद है सुदेव, VIRS याद रखिए हमेशा कोड वर्ड। और इस तरफ जहाँ कृष्ण खड़े हैं उनके साथ ललिता जी खड़ी है, चंपक लता, चित्रा, तुंगविद्या, LCCT, बस LCCT और VIRS। तो इस प्रकार ये याद करने के कुछ तरीके हैं। तो इस प्रकार ये 5 प्रकार की प्रमुख सखियां हैं जिनको परम प्रेष्ठ सखी कहा जाता है। और इन सखियों में इनकी विशेषता ये होती है कि इनका संबंध राधा रानी से तो होता ही है, साथ में कृष्ण से भी होता है, और इनमें ये योग्यता भी होती है कि राधा कृष्ण को दोनों को ही प्रताड़ सकती हैं। और ललिता जी तो हैं वो गुरु सखी भी हैं श्रीमती राधारानी की, बिना गुरु के कोई नहीं है, सबका कोई ना कोई गुरु है। ये समस्या नहीं है, ये कृपा है। तो राधारानी भी स्वयं वहां पर गुरु सखी को अपना रही हैं, यानी कि ललिता जी को अपना रही। तो फिर हमारा क्या कहना, हम जैसे बंजीव आत्माओं के लिए तो बहुत ही आवश्यक है, मार्गदर्शन की आवश्यकता है। तो इस प्रकार ये अलग अलग प्रकार की सखियों का वर्णन किया गया है, और साथ में श्री रूप गोस्वामी ने इसका वर्णन राधा कृष्ण गणदेश दीपिका, जो श्री रूप गोस्वामी ने लिखा है ये ग्रंथ, उसमें उन्होंने कृष्ण के परिवार के सदस्यों के बारे में, श्रीमती राधारानी के परिवार के सदस्यों के बारे में विस्तार से वर्णन किया है। ये ग्रंथ प्रकाशित भी हुआ है अंग्रेजी भाषा में भी, संस्कृत से। तो ये 8 प्रकार की संख्या है, तो इनके बारे में थोड़ा सा हम वर्णन करने का प्रयास करेंगे। हमें इतनी जानकारी नहीं है इनके बारे में, लेकिन जो भी है थोड़ा बहुत, क्योंकि समय भी कम है, उसके हिसाब से हम बोलने का प्रयास करेंगे। तो ललिता सखी का जो जन्म स्थान है, उस स्थान का नाम है ऊंचा गांव, ऊंचा गांव। और ये ऊंचा गांव आता है कामेवन में, कामेवन। और तो वहां पे ऊंचा गांव में ये पर्वत है जहां पे ललिता जी की अटारी और ललिता जी की बाल क्रीड़ाओं का स्थान है, मतलब उनकी लीला स्थली वहां पर है, और वहां पे जन्म स्थान है। तो यहां पे ललिता सखी के बाल्य क्रीड़ा का स्थान है। इनका पिता का नाम विशोक गोप, तथा माता का नाम शारदी गोपी है, था नहीं। इनका विवाह जावट में हुआ था, जावट जानते हैं ना, राधारानी के ससुराल, तो वहीं इनका विवाह हुआ। पति का नाम भैरव गोप है, भैरव। श्रीमती राधिका की अष्ट सखियों में ललिता जी सर्वप्रधान है। श्रीमती राधिका की सखियां, दासियों और दूतियों, इन तीनों प्रकार के युथों की ये सर्वाध्यक्षा है, चीफ है सबसे। आठ गोपियों में भी ललिता जी चीफ है, मारा राधारानी तो है ही सबसे मुख्य है, इनके बाद राधारानी गुरु सखी है ललिता जी। और इस प्रकार ललिता जी हमेशा क्या करती रहती हैं, कुछ ना कुछ संकेत या मार्गदर्शन करती हैं, श्रीमती राधारानी की सेवा करती हैं वो। और उनके बारे में और भी थोड़ा बहुत जो जानकारी में मिला है वो भी हम बताना चाहेंगे आपको। तो उनकी कांति कैसी है, पीत वर्ण की है, गोरचना कांति बोलते हैं उसको, गोरचना कांति। और वस्त्र पहनती हैं शिखी पिच, शिखी पिच का मतलब है मोर पंख से बने हुए, मोर पंख से बना हुआ वस्त्र। और उनका जो कुंज है वो राधा कुंड की उत्तरी दशा में है, जहां पे एक समय हम भक्तों ने जाकर वहां पे मलमूत्र साफ किया था, ललिता कुंड में, याद है, हमारे पर वैष्णव की कृपा हुई और वहां पे हम जैसे दिल्ली वासियों से ललिता कुंड की सफाई करवाई गई। प्रातःकाल वहां पे वहां के निवासी लोग मल त्यागने के लिए आते, तो स्थान बहुत ही ज्यादा गंदा हो गया, तो उस स्थान की सफाई करने का अवसर प्रदान किया, वैष्णव की कृपा से होता है। ललिता कुंड है उस स्थान का नाम, तो ललिता कुंड अभी भी दिखाई पड़ता है, जैसे राधा कुंड श्याम कुंड दिखाई पड़ता है, तो वहां पे तो अन्य कई कुंड हैं जो लुप्त हो चुके हैं दृश्य से, लेकिन ललिता कुंड अभी भी नजर आ रहा है। और ये राधा कुंड की उत्तरी दिशा में है, ललिता ललिता नंदत, ललिता नंदत उनकी कुंज का नाम। और ये जो उसका इसकी कांति बताई है, तड़ित वर्ण की है, तड़ित का मतलब होता है कि चमकीला, चमकीला है। और से बहुत सारे रत्न हैं, कई प्रकार के रत्न हैं। और उनकी सेवा क्या है, तांबूल सेवा, तांबूल सेवा, तांबूल ला कर देते हैं राधा रानी को, कृष्ण के लिए तांबूल लाते, तांबूल सेवा। और निकुंज लीला में उनकी जो उम्र है कितनी है, 14 साल 8 महीने 27 दिन बड़ी हैं श्रीमती राधा रानी, 27 दिन बड़ी हैं श्रीमती राधा रानी। लेकिन ऐसे भौम लीला में यहाँ पर इस प्राकृत जगत में ऐसा प्रतीत होता है कि केवल 2 दिन का ही अंतर है, लेकिन अंत्य लीला में इस प्रकार बताया गया है कि श्रावण शुक्ल एकादशी के दिन वो उनका जन्मदिन मनाया जाता है। लेकिन अभी श्रावण मास तो नहीं चल रहा है, अभी कौन सा मास चल रहा है, अश्विन हो गया, भाद्र के बाद अश्विन मास आ गया, लेकिन जो नित्य लीला है उसमें श्रावण मास में उनका प्राकट। उनका खंडित भाव है और एक प्रकार जैसे महान का भाव जिसको कहते हैं, वाम प्रकार। और वीणा वादन, विशाखा जी मृदंग बजाती हैं और ललिता जी वीणा वादन, वीणा बजाते हैं। और उनका सबसे जो मधुर धुन है वह राग भैरव कलिंगड़ा, नाना प्रकार के राग हैं, तो उनका सबसे जो सबसे जो प्रिय राग है वो ये है। और उनके जो मुख्य सेविका है, चीफ असिस्टेंट कौन है, श्री रूप मंजरी, जिनके अनुयायी हम लोग, श्री रूप गोस्वामी के, है कि नहीं। तो देख लीजिए कितने करीब हैं, ललिता जी सबसे करीब हैं श्रीमती राधारानी के, और उनके चीफ असिस्टेंट कौन है, श्री रूप मंजरी है। और उन्हीं के परंपरा में हमें श्री रूप गोस्वामी के परंपरा में सिद्ध देह में श्री रूप मंजरी है, साधक रूप में श्री रूप गोस्वामी, तो हम रूप गोस्वामी के अनुगत हुए, रूपानुग कहलाए जाते हैं, इसलिए थोड़ा आसान है वहां पहुंचना, इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी आसान है। तो इस प्रकार उनकी अपनी जो है कुछ प्रिय सखियां हैं, उनकी अपनी जो सखियां हैं ललिता जी की, वो है रत्न प्रभा, रतिकला, सुभद्रा, भद्रेकिका, सुमुखी, धनिष्ठा, कलहंसी और कलापिनी। और इनके क्या क्या गुण बताए गए हैं, बहुत हृदय में इनके करुणा है अपने पिता की तरह, जैसे इनके पिता में भी एक गुण पाया जाता है, बहुत बदन्याय है, ऐसे बोलते ना महाप्रभु के नमो महाबदन्याय। ललिता जी की कृपा नहीं हुई तो कभी ब्रज में प्रवेश नहीं मिलेगा। और साथ में हमेशा क्या करते हैं, राधा रानी की सेवा में लगी रहती हैं, और कृष्ण कोई अगर सुझाव देते हैं तो वो पहले मना कर देती हैं ललिता जी, और कई बार उनको क्रोध भी आता है। और वंशी चोरी की लीला में भी हम देखते हैं कि राधा रानी को कई बार ललिता जी मना करती हैं कि आप वंशी उनको वापस ना करें, इशारा कर करके। और गौर लीला में ललिता जी स्वरूप दामोदर के रूप में महाप्रभु की सेवा में लगे रहते हैं। स्वरूप दामोदर की जब तक श्रील स्वरूप दामोदर की जब तक आज्ञा ना हो जाए महाप्रभु के आप पास नहीं जा सकते। स्वरूप दामोदर से जब तक अनुमति ना मिल जाए, उनसे प्रमाण ना मिल जाए, आप कोई कविता प्रस्तुत करना चाहते हैं, कोई लेख प्रस्तुत करना चाहते हैं महाप्रभु के समक्ष, स्वरूप दामोदर सबसे पहले उसको अनुमोदित करेंगे, प्रमाणित करेंगे, नहीं तो महाप्रभु के पास नहीं जा सकते। यहां तक कि रघुनाथ दास गोस्वामी के लिए भी महाप्रभु ने यही कहा है कि नहीं, ये स्वरूप दामोदर जो है आपको सब समझा देंगे, लेकिन फिर भी आप सुनना चाहते हैं तो मैं संक्षेप में आपको बताऊं, तो संक्षेप में कुछ बताया, लेकिन उन्होंने कहा कि आप स्वरूप दामोदर के साथ रहो, उनके सचिव बन के रहो। तो इस तरह से रघुनाथ दास गोस्वामी को बहुत निकटतम सानिध्य प्राप्त हुआ स्वरूप दामोदर का। तो इस प्रकार इसलिए जब रघुनाथ दास गोस्वामी भी जब वापस आए ब्रज में, क्योंकि स्वरूप दामोदर भी अप्रकट हो चुके थे महाप्रभु के जाते ही, तो फिर उनको एक ही व्यक्ति दिखाई पड़ा जिनको देख के लगा कि इनमें स्वरूप दामोदर जैसे गुण हैं, और वो कौन थे, श्रील रूप गोस्वामी। इसे श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी श्रील रूप गोस्वामी के बहुत निकट रहे और उनसे मार्गदर्शन लेते हुए आज्ञा मांग के वो राधा कुंड में चले भजन करने के लिए। लेकिन श्री रूप गोस्वामी ने सुझाव दिया कि वो अकेले न जाए, साथ में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी को भी ले जाए। और रघुनाथ दास गोस्वामी ने लगभग 45 साल राधा कुंड में भजन किया, सब जंगल था पूरा। तो इस प्रकार ये बहुत संक्षिप्त और बहुत सुंदर वर्णन किया है श्री रूप गोस्वामी ने श्री ललिता जी के बारे में राधा कृष्ण गणदेश दीपिका में। और कई बातें हैं, लेकिन आज हमें ये भी बताया गया कि क्योंकि श्री राधाष्टमी बहुत नज़दीक है और राधारानी की स्तुति करने से पहले ये आवश्यक है कि ललिता जी की स्तुति की जाए। राधाष्टमी के दिन विशाखा जी भी प्रकट हुई उसी समय उसी दिन, और वही उम्र है जो उम्र श्रीमती राधारानी की उम्र है, वही उम्र जो है किसकी है, विशाखा जी की हुई। विशाखाष्टमी और राधाष्टमी एक ही दिन एक ही समय। तो श्रीमती राधारानी के बारे में हमने क्या सोचा कि कहने के लिए तो बहुत कुछ है, भंडार है, खान है, शास्त्रों में, पुराणों में, समय तो नहीं हमारे पास, तो हमने केवल एक श्लोक लेने का हमने सोचा है। श्रीमती राधारानी के उम्र जो है हमेशा 14 साल 2 महीने 15 दिन ये इनकी उम्र है, और कृष्ण की उम्र कितनी रहती है, 15 साल 9 महीने 7.5 साल। तो जन्म इत्यादि के बारे में तो आप बाद में सुनेंगे, लेकिन श्लोक ले रहे हैं। पहला श्लोक है ये श्रीमद् भागवत का, जिसमें श्रीमती राधारानी की महिमा का वर्णन किया है हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने, श्रील जी गोस्वामी और अन्य आचार्यों ने पहले ही श्लोक में श्रीमती राधारानी की महिमा का वर्णन कर दिया। इस तरह से हमें कई बार सुझाव दिया जाता है कि हम भागवत के प्रथम स्कंद को प्रारंभ करें, लेकिन हमारे कई ऐसे आचार्य टीकाकार हैं जिन्होंने प्रथम अध्याय के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में ही श्रीमती राधे राधाणी का गुणगान कर दिया है ना। तो ये उनकी दिव्य दृष्टि है। तो हम प्रयास करेंगे तो आप श्लोक एक बार उच्चारण करें, उसके बाद फिर हम थोड़ा प्रयास करेंगे इसका वर्णन करने के लिए।
जन्मादियस्य यथोन्वयाद इतरश्च अर्थे शुभिक्य स्वराट तेन ब्रह्म हृदय आदि कवये मुयन्ति सूर्यः तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा वानास्वेन सदा निरस्तकुहुकं सत्यं परं धीमहि।
हरे कृष्ण। तो इसमें श्रील जी गोस्वामी जो बता रहे हैं और जो कुछ आचार्यों ने हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने जिस प्रकार वर्णन किया है, हम प्रयास करेंगे इसका वर्णन करने का। तो कृष्ण संदर्भ में जो श्रील जी गोस्वामी ने षट संदर्भ लिखे हैं उसमें ये श्री कृष्ण संदर्भ है, उसके अनुच्छेद में श्रील जी गोस्वामी ने इस प्रकार व्याख्या की है, इस प्रथम श्लोक की व्याख्या की है। तो इस श्लोक में ना ही केवल राधा कृष्ण के ऐश्वर्य का वर्णन हो रहा है लेकिन साथ में उनके दिव्य मधुरता का यानी उनके माधुर्य का भी वर्णन हो रहा है प्रथम श्लोक में। श्रील प्रभुपाल ने हमें समझाया है कि सबसे पहले हमें किसको जानना है, कृष्ण को जानना है, फिर बाद में श्रीमती राधारानी को। अक्सर लोग बोलेंगे नहीं पहले श्रीमती राधारानी को जानना है फिर कृष्ण को जान पाएंगे, लेकिन प्रभुपाल ने ऐसा नहीं कहा। प्रभुपाल ने कहा पहले कृष्ण को जानो फिर श्रीमती राधारानी को समझ पाए, क्योंकि श्रीमती राधारानी भगवान श्री कृष्ण की अंतरंगा शक्ति है, लादनी शक्ति है, स्वरूपनी है। तो इसलिए पहले तत्व को स्पष्ट रूप से समझना बहुत जरूरी है। भगवान की अपनी शक्ति है और भगवान की अपनी स्वेच्छा से श्री कृष्ण जो है राधारानी के अधीन हो जाते हैं, श्री कृष्ण की इच्छा से, है ना। क्योंकि ये प्रश्न उठता है और प्रश्न का उत्तर श्रील भक्तों ठाकुर ने दिया है कि अगर श्री कृष्ण परम भगवान है तो फिर वो श्रीमती राधारानी के काबू में कैसे आ जाते हैं। राधारानी का एक गुण ये है 25 दिव्य गुणों में जो आखिरी गुण बताया श्री गुरु गोस्वामी ने, वो क्या है, शी फुली कंट्रोल्स कृष्णा, है कि नहीं। लेकिन साथ में बोलते हैं कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, तो ये दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट, विरोधाभास हो गया। तो इसका उत्तर दे रहे हैं भक्तों ठाकुर, ये श्रीमती ये श्री कृष्ण की इच्छा है, वो अपने अंतरंगा शक्ति से अपनी लादनी शक्ति से इतने प्रभावित होते हैं कि वो उनकी सेवा में लगना चाहते हैं और उनके अधीन होना चाहते हैं। उनकी क्योंकि इच्छा है इसलिए ऐसा हो जाता है, इच्छा शक्ति के कारण। जैसे इच्छा होती है भगवान के धाम में, गोलोक धाम में श्री सनातन गोस्वामी बता रहे हैं जितनी भी लीलाएं हैं वो पुनः पुनः घटित होती हैं। तो प्रश्न उठ सकता है कि इन लीलाओं को सुन के, इन लीलाओं में भाग लेके भक्त लोग बोर तो नहीं हो जाते कि बार बार वही लीलाएं घटित हो रही हैं। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं कि योग माया का पर्दा श्री कृष्ण अपने ऊपर और भक्तों के ऊपर डाल लेते और भूल जाते हैं कि उन्होंने वो लीला पहले भी की थी। मान लीजिए उन्होंने काल्य दमन की लीला की और जब दोबारा वो लीला करेंगे तो भूल जाएंगे कि पहले वो लीला कर चुके हैं। कृष्ण भूल जाते हैं और भक्त भी भूल जाते हैं, उनके नित्य परिकर भी भूल जाते हैं। किसकी इच्छा है ये कृष्ण की इच्छा है कि योग माया का पर्दा उनके ऊपर भी लग जाए और ढक जाए, योग माया का प्रदेश। और इस प्रकार यहां पर इसलिए हमने इसको श्लोक के बारे में वर्णन करने से पहले ये बताना हमने समझा, ठीक समझा, जानना जरूरी है कि सब जैसे प्रभुपाद बता रहे हैं कि कृष्ण को सबसे पहले जानने का प्रयास करें, यानी कि सबसे पहले हम भगवद गीता का अध्ययन करें अच्छी तरह से। और श्रील प्रभुपाद ने जो ग्रंथ दिया है फर्स्ट कैंटो, जिस तरह से प्रभुपाद ने अनुवाद करके दिया है उसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ें, हम गंभीरता से पढ़ें। और भागवत का जो आश्रय तत्व है, श्रीमद भागवत के जो आश्रय तत्व है जो श्री कृष्ण है, इस बात को अच्छी तरह से समझ लें पहले प्रथम 9 स्कंदों में, उसके बाद इस प्रकार की व्याख्या को हम लोग समझने का प्रयास करें। नहीं तो प्रारंभ में अगर ये व्याख्या पढ़ेंगे बिना कृष्ण को जाने तो प्राकृत अवस्था में फिर अपराध कर बैठेंगे हम। इसलिए तत्व को जानना बहुत जरूरी है। और उसके बाद ये इस प्रकार की जो व्याख्या है इसमें भाव की प्रधानता है और इस कारण से इस प्रकार की व्याख्या करते हैं आचार्य लोग। तो यहां पर क्या बताया जा रहा है कि इस श्लोक में केवल इनके ऐश्वर्य का वर्णन नहीं हो रहा, राधा कृष्ण के ऐश्वर्य का वर्णन ही नहीं हो रहा सिर्फ, बल्कि उनके दिव्य माधुर्य का भी वर्णन हो रहा है। और यहां पर जो श्लोक आया है अन्वयाद यथोन्वयाद, यथोन्वयाद यानी कि जो श्रील प्रभुपाद ने क्या अनुवाद किया है देखिए यहां पर यथोन्वयाद अन्वयाद प्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से। तो यथोन्वयाद मतलब यानी कि ये परम भगवान कृष्ण के लिए संबोधित करता है जो कि श्रीमती राधारानी से बहुत ज्यादा आसक्त हैं, और यानी कि उनकी अपनी दिव्य अंतरंगा शक्ति से। इतरतः, इतरतः का मतलब है उनके नित्य संगिनी श्रीमती राधारानी। यथ का मतलब है जिनसे अद्यस्य यानी कि माधुर्य रस का जो आनंद, और जन्म का मतलब व्यक्त होना, यानी कि कहने का अर्थ है इस शब्दों को मिला के इसका जो अर्थ निकलता है वो क्या है, श्री श्री राधा कृष्ण जो हैं वो माधुरी रस के दिव्य आश्रय हैं या दिव्य धाम हैं। या दूसरा अर्थ ये भी बताते हैं कि जैसे यहां बताया जन्मादि अस्य जन्मादि, जन्मादि आदि का मतलब क्या है आदि रस, प्रभुपाद भी बता रहे हैं जगह तात्पर्य में, है ना। आदि का मतलब क्या है आदि रस, श्रृंगार रस, माधुर्य रस, उन्नत उज्जवल रस, कई नाम है आदि रस। आदि रस यानी कि माधुर्य रस का श्री कृष्ण तभी आस्वादन कर पाते हैं जब वो श्रीमती राधारानी साथ, इसका अर्थ ये भी है। तो कई प्रकार की व्याख्या है और यहां बताया गया च अर्थेशु, च अर्थेशु, च अर्थेशु, और कई लीलाओं में। यहां पर क्या अर्थ बताया कई लीलाओं में अभिज्ञ क्या है दक्ष है, कई लीलाओं में दक्ष। लेकिन साथ में एक भी बताया अर्थ इसका एक और बताया अभिज्ञ, यहां पर श्री कृष्ण अभिज्ञ है। अभिज्ञ मतलब क्या होता है कॉग्निसेंट, सब कुछ जानने वाले। लेकिन हमारे पूर्ववर्ती आचार्य बोलते हैं लेकिन श्रीमती राधारानी के प्रेम की महिमा को नहीं जान पाते। श्रीमती राधा श्री श्री क्या है राधा कृष्ण प्रणय महिमा किदृशो, राधा कृष्ण प्रणय प्रणय महिमा, राधा प्रणय महिमा किदृशो, राधा कृष्ण नहीं राधा प्रणय महिमा किदृशो, कौन बोल रहा है श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी। राधा रानी की प्रणय महिमा को समझना चाह रहे थे कृष्ण, यानी कि उनकी उनका जो प्रेम है राधा रानी का जो प्रेम है उसकी महिमा को श्री कृष्ण नहीं जान पाए। द्वापर में जो लीलाएं की ब्रज की जो लीलाएं की उनका जो प्रेम है उसकी महिमा को नहीं समझ पाए श्री कृष्ण। तो कैसे कह सकते हैं कि श्री कृष्ण जो है अभिज्ञ है, ये भी एक व्याख्या है। तो क्योंकि राधा अष्टमी नजदीक है इसलिए हम राधा रानी का गुणगान कर रहे हैं इस तरह से, यानी कि हम उस कृष्ण की आराधना करते हैं जो श्रीमती राधा रानी की सेवा करते हैं सेवा कुंज में। प्रभुपाद कहते हैं देर आर सो मेनी कृष्णास, जो भजन है ना भज हुरे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार विंदरे, इसका प्रभुपाद ने तात्पर्य दिया है, सॉन्ग बुक में है पता नहीं लेकिन उस भजन में है जो गाया है प्रभुपाद ने। प्रभुपाद कहते देर आर सो मेनी कृष्णास बट वी आर आफ्टर नंद नंदन कृष्ण। कृष्ण द्वारका में भी हैं मथुरा में भी हैं लेकिन जो नंद नंदन कृष्ण है उनके पीछे लगे हैं हम लोग। इसलिए गोविंददास कह रहे हैं भज हुरे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार विंदरे। तो इस प्रकार स्वराट शब्द आया है, स्वराट का मतलब होता है इंडिपेंडेंट, सुप्रीमली इंडिपेंडेंट, पूर्ण रूप से स्वतंत्र है श्री कृष्ण, है कि नहीं। जितनी स्वतंत्रता श्री कृष्ण के पास है किसी के पास भी नहीं है, बलराम जी को भी मोहित कर लेते हैं योग माया शक्ति से, बलराम जी तक श्री कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। तो स्वराट तो हुए ना कि नहीं। तो लेकिन यहां पे पूर्ववर्ती आचार्यों का यह कहना है कि पूर्ण स्वतंत्रता कहां पर है, जो श्री रूप गोस्वामी क्या कह रहे हैं उनका जो उनके जो गुण है उसमें जो 25वां गुण है जो 25th ट्रांसेंडेंटल क्वालिटी है श्रीमती राधारानी की वो क्या है, शी फुली कंट्रोल्स कृष्णा अपने प्रेम के द्वारा। कृष्ण रोना पड़ता है, कई बार कृष्ण को गिड़गिड़ाना पड़ता है, आंसू बहाते हैं कृष्ण, मोर मुकुट रख देते हैं श्रीमती राधारानी के चरणों में है। स्मर गरल खंडनम मम शीर्षि मंडनम देही पद पल्लवम उदारम, जयदेव गोस्वामी लिख रहे हैं। क्या किया श्री कृष्ण ने, राधारानी के मान को भंग करने के लिए उनके चरणों को अपने शीश में धारण किया और चरणों के द्वारा अपने शीश को सुशोभित किया, अलंकृत किया। श्री कृष्ण का अलंकार क्या है, उनका श्रृंगार क्या है, श्री कृष्ण का श्रीमती की राधारानी के चरण कमल जो बड़े उदार है, ऐसा बोल रहे हैं जयदेव गोस्वामी। स्वर गरल खंडनम मम शीर्षि मंडनम देही पद पल्लवम उदारम, राधारानी के चरण जो है बहुत क्या है, कमल सदृश है, उदार है बड़े, उदार मतलब बहुत करुणा है उनके चरणों में। श्रील भक्ति सिद्धार्थ ठाकुर कहते हैं कि राधारानी के चरणों का दर्शन हम कैसे कर सकते हैं, उनके नखों का दर्शन कैसे कर सकते हैं, उनके नखों के बारे में तो बहुत उनकी महिमा बताई गई है कि नहीं, तो उनके नखों का दर्शन कैसे कर पाएंगे बद जीव। तो श्रील भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर कहते हैं कि जब जब हम श्री गुरुदेव के चरणों का दर्शन करें, गुरुदेव के चरणों का नखों का जब हम दर्शन करते हैं, तो ये समझ लीजिए कि आप राधारानी के चरणों का दर्शन कर रहे हैं। इसलिए गुरु को कहा गया श्री गुरु चरण कमल, श्री गुरु चरण कमल, श्रीमती राधारानी के प्रतिनिधि हैं गुरुदेव। और प्रभुपाद ने भी एक जगह लिखा है कि मेरे गुरु कौन है, राधारानी है, और उनकी आज्ञा से मैं जा रहा हूं, पाश्चात्य जगत में प्रभुपाद जी का एक कोट है, पूरा याद नहीं है लेकिन मिलेगा आपको पूरा कोट, SMS कर देंगे। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं माय गुरुदेव श्रीमती राधारानी, तो उन्होंने मुझे भेजा है पाश्चात्य जगत में प्रचार के लिए। तो इस प्रकार व्याख्या की गई है आचार्यों के द्वारा, और आगे के बता रहे हैं यहां पे आदि कवये, आदि कवये, तो आदि कवये का मतलब है कि मुझे बताया गया ब्रह्मा जी के द्वारा, और व्यासदेव इन लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। और सबसे पहले ब्रह्मा जी को प्राप्त हुआ तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, तो उनको भी हृदय में प्राप्त हुआ दिव्य सरस्वती के द्वारा, उनको गायत्री मंत्र प्राप्त हुआ, है ना। सरस्वती देवी जो ये नहीं जो इस भौतिक जगत में, ट्रांसेंडेंटल सरस्वती, और वो कौन है, वो स्वयं श्रीमती राधारानी की ही विस्तार है। तो ब्रह्मा जी को भी जो दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ वो वास्तव में श्रीमती राधारानी की कृपा से प्राप्त हुआ है। और आगे क्या बता रहे हैं, ये या तेने का मतलब है कि जिन्होंने सृष्टि के प्रारंभ में मेरे हृदय में ये ज्ञान प्रकाशित किया। उसके बाद यद सूर्य, यहां पे आ रहा ना शब्द, यद सूर्य, मुयंती अनंत शेष, और जो उनके जैसे हैं वो सब मोहित हो जाते हैं, देवी देवता भी क्या देकर मोहित हो जाते हैं, श्रीमती राधारानी की सौंदर्य को देखकर और उनकी गुणवत्ता को देखकर देवी देवता गण भी मोहित हो जाते हैं। और एक और बात बड़ा अच्छा बताया है, और इस प्रकार का वर्णन भी मिलता है कि जो राधा कृष्ण जो रास करते हैं, महारास करते हैं, जो कि बहुत विशेष है, विशेष दृश्य है और प्राकट्य लीला है, देवी देवताओं को भी दिखाई पड़ता है, तो ये जो राधा कृष्ण की जो रास लीला का जो दृश्य देखकर भी मोहित हो जाते हैं, तो इस तरह इसलिए लिखा मुह्यंती। फिर यहां पर लिखा है तेजोवारी मृदाम का मतलब क्या है, तेज क्या है, किसका तेज, ब्रह्म तेज नहीं, यहां तेज का मतलब है शरद पूर्णिमा का तेज। शरद पूर्णिमा के दिन जब पूर्णिमा का चांद होता है तो उसकी जो कांति है वो है तेज। और वारी का मतलब जल, जल कौन सा, ये नलके में आता है वो जल नहीं, बोरिंग वाटर नहीं, यमुना जी का जल, यमुना जी का जल है यमुना जी के तट पे, और उसके बाद शरद पूर्णिमा के दिन, और मृदा मिट्टी ब्रज रज में। तो ये वो स्थान है जहां पर क्या हो रहा है, ये रासलीला हो रही है, और इस प्रकार ये वर्णन मिलता है। और यहां जिस प्रकार वर्णन कर रहे हैं शिल जी गोस्वामी, इनका कहना है कि राधा कृष्ण की लीलाओं का ये वर्णन कर रहा है, तेजो वारी मृदाम यथा विनिमया, कि परम भगवान श्री कृष्ण बंसुरी बजा रहे हैं। हम शिल जी गोस्वामी की भी व्याख्या बता रहे हैं, साथ में अन्य आचार्यों ने जो इस श्लोक में लगभग मिलती जुलती व्याख्या दी है वो भी बताने का प्रयास कर रहे हैं। और इस शब्द ध्वनि को सुनकर जितने भी वृंदावनवासी थे या अचर जीव भी थे वो भी दिव्य आनंद से ओतप्रोत हो गए, और उन्होंने भी अपना स्वभाव बदल दिया। चंद्रमा की कांति, नक्षत्रों की कांति कमजोर पड़ गई, और कैसे लगने लगी, जिस प्रकार जल हो या पृथ्वी हो उस तरह लगने लगी। और राधारानी के कांति के समक्ष और कृष्ण, राधा और कृष्ण के उनके चरणों के नखों के समक्ष, यानी नखों से जो तेज निकलता है, राधा कृष्ण के चरणों के नखों के तेज के समक्ष और चंद्रमा के समक्ष, उनके नखों के तेज के समक्ष, राधा कृष्ण के जो चरण के नखों के तेज के समक्ष चंद्रमा की कांति जो है वो फीकी पड़ गई। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा देख सकते हैं आप लोग, कितनी कांति होती है उसमें, कितना तेज होता है कि नहीं, ऐसा लगता है रात को ट्यूबलाइट जला दिया हो। लेकिन राधा कृष्ण के नखों से जो कांति निकलती है उससे वो चंद्रमा की कांति फीकी पड़ गई। और आगे क्या बता रहे हैं, जल और नदियां उन्होंने क्या किया, अग्नि का गुण धारण कर लिया और ऊपर की ओर उठने लगी। और ये सब कब क्यों हो रहा था, राधा कृष्ण की अद्भुत लीलाओं के कारण हो रहा था। तो इस प्रकार शिल जी गोस्वामी ने व्याख्या किया, यत्र त्रिसर्गो मृषा, यत्र यत्र का मतलब श्रीमती राधारानी में, त्रिसर्ग, त्रिसर्ग मतलब कृष्ण की तीन शक्तियां, श्री भू और लीला शक्ति, ये तीन शक्तियां हैं, है ना। और तीन धाम के लिए भी ये संकेत देता है, द्वारका मथुरा और वृंदावन, त्रिसर्ग है ना, त्रिसर्ग मृषा। और तीन प्रकार की गोपियां, एक गोपियां जो राधारानी की बहुत मित्रता से उनके साथ रहती हैं, और एक जो है बिल्कुल शांत उसमें रहती हैं, भाव में रहती हैं राधारानी के साथ, और एक गोपियां जो राधारानी के विरुद्ध रहती हैं, तीन प्रकार की गोपियां। तो त्रिसर्ग का अर्थ ये है, त्रिसर्ग के क्या क्या बताया हमने, तीन धाम, और उसके बाद क्या बताया, तीन प्रकार की शक्तियां और तीन प्रकार की गोपियां, ठीक है। और मृषा का मतलब है, मृषा का मतलब होता है कि व्यर्थ, इसका कोई उपयोग ना हो, यानी कि ये जो शक्तियां हैं, धाम है और वृंदावन की जो गोपियां हैं वो सब क्या है, उसका श्रीमती राधारानी के समक्ष, उनके ऐश्वर्य के समक्ष, उनके गुणों के समक्ष, उनके सौंदर्य के समक्ष, ये तीन प्रकार का जो वर्णन किया उसका महत्व नहीं है, इनसिग्निफिकेंट श्रीमती राधारानी के सामने, यानी कि तीन प्रकार के धाम, तीन प्रकार की शक्तियां और तीन प्रकार की गोपियां, ये श्रीमती राधारानी के सामने क्या है, इनसिग्निफिकेंट है। और साथ में क्या बता रहे हैं, और कृष्ण को अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए इन तीनों की आवश्यकता नहीं पड़ती। कोई बोलेगा शायद कृष्ण को इसकी आवश्यकता पड़ जाए, है ना, राधारानी के सामने तो इनसिग्निफिकेंट है, लेकिन हो सकता है कि कृष्ण को शायद आवश्यकता पड़ती हो, लेकिन यहां बता रहे शिल जी गोस्वामी नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती कृष्ण को भी, क्योंकि सारी इच्छाएं श्रीमती राधारानी पूरा कर देती है, कृष्ण की सारी इच्छाएं कौन पूरा कर देती है, श्रीमती राधारानी पूरा कर देती है। सत्यम, आखिरी जो लाइन, सत्यम परम धीमहि, और इसका मतलब सत्यम का मतलब है कि सबसे सर्वोच्च पराकाष्ठा में स्थित हैं, पूर्णतम अवस्था में स्थित हैं राधा कृष्ण, और दिव्य आनंद की अनुभूति करते हैं लीलाओं के द्वारा, और उनकी अवस्था कभी बदलती नहीं है। परम का अर्थ है दिव्य गुण, लीलाएं और अन्य जो राधा कृष्ण के जो उनके गुण हैं, वो जो गुण है उनकी जो लीलाएं हैं वो किसी स्थान में कहीं भी नहीं पाई जाती हैं, उसकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती। और पूरे ब्रह्मांड को यह आश्चर्यचकित करती हैं उनकी लीलाएं, उनके गुण। और ये जो लीलाएं हैं राधा कृष्ण की, जो लीलाएं हैं भक्तों के लिए क्या है, प्राण है। तो इस प्रकार उनके इन लीलाओं से कौन आकर्षित नहीं होगा। और उसके बाद यहां आगे बताया है राधा माधव इस प्रकार नाना प्रकार की लीलाएं करते हैं। और ये जो प्रथम श्लोक है इसमें जैसे हमने पहले ही बताया कि केवल यहां पर राधा कृष्ण के ऐश्वर्य के बारे में ही नहीं वर्णन मिल रहा है, बल्कि उनके दिव्य माधुर्य के बारे में वर्णन मिल रहा है प्रथम श्लोक में ही, है ना। तो इस प्रकार राधारानी का गुणगान कई प्रकार से किया गया। कहने का तात्पर्य यह है श्रीमद् भागवत में जिस तरह से हम वर्णन सुनते हैं कि प्रत्येक श्लोक में आप कृष्ण को ढूंढ सकते हैं, अगर हमारी दृष्टि हो तो हम लोग कृष्ण के साथ श्रीमती राधारानी को भी ढूंढ सकते हैं, क्योंकि कृष्ण कभी अकेले नहीं है। एक बार एक भक्त था, शिष्य था श्रील भक्ति सिद्धांत सिंह ठाकुर का, वो राधा कुंड में जाके रहने लगा। तो जब वो आए वहां पहुंचे तो कई वहां पे जो बाबा जी लोग थे उन्होंने कहा श्रील भक्ति सिद्धांत सिंह ठाकुर को कि आपका एक शिष्य यहां पर है, उनसे हम बड़े प्रसन्न हैं। तो उन्होंने कहा क्यों क्यों प्रसन्न है आप? तो उन्होंने कहा कि हम इसलिए प्रसन्न है कि वो हमेशा राधा राधा करता रहता है, वो राधारानी का नाम ही लेता रहता लगातार। तो श्रील भक्ति सिद्धार्थ ठाकुर ने कहा लेकिन मैंने तो उसको नहीं कहा ऐसा करने के लिए, मैंने तो उसको हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने के लिए कहा था, मैंने तो नहीं कहा उसको, और मैं तो उससे प्रसन्न नहीं हूं। तो श्रील भक्ति सिद्धार्थ महाराज कहते मैं तो उससे प्रसन्न नहीं हूं, मैंने तो उसको कहा था कि दोनों का नाम ले एक साथ, राधा कृष्ण का दोनों का नाम। तो ये है मतलब हमारे परंपरा में जब हम राधारानी का नाम पुकारते हैं तो साथ में कृष्ण का नाम भी पुकारते हैं, अकेले नहीं छोड़ देते हैं कृष्ण को। और ये बात सही है, ये बात भी सही है जैसे प्रभुपाद कहते हैं कि अगर राधारानी कह दें कि इसको अपना लो, अगर वो व्यक्ति वो साधक मूर्ख है या परिपक्व ही नहीं है तो कृष्ण एक क्षण भी नहीं विचार करेंगे और उसको स्वीकार कर ले, उस मूर्ख को भी स्वीकार कर ले अगर राधारानी कह दे, रिकमेंड कर दे। ये बात तो सही है लेकिन साथ में ये बात भी ठीक नहीं होगा कहना कि हाँ केवल हम राधारानी की अब सेवा करेंगे, कृष्ण को हटा दो आप, तो उससे राधारानी प्रसन्न नहीं होंगी। हमारी संस्था का नाम है अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ। एक बार हमारी फोन में किसी से बातचीत हो रही थी तो हमने कहा हरे कृष्णा, वो कहता है राधे राधे, हमने कहा हरे कृष्णा, वो कहता है राधे राधे। मैंने कहा आप राधे राधे क्यों कह रहे हैं? बोलते राधे राधे इसलिए कह रहे हैं कि कृष्ण प्रसन्न हो जाए, ठीक है ना। तो हमने कहा कि हमारा सिद्धांत क्या है, राधा दास्यम, हम सब राधारानी की सेवा चाहते हैं, चाहते कि नहीं चाहते सब, यही हमारा लक्षण है कि हम राधारानी की सेवा में लग जाएं। तो चैतन्य महापुर ने क्या किया, चैतन्य महापुर राधारानी के भाव में है। कृष्ण जब राधारानी का भाव स्वीकार कर लेते हैं, आश्रय ले लेते हैं, तो महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं, राधारानी के भाव को समझने के लिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं, है कि नहीं। तो जब राधारानी के भाव में प्रकट हुए तो महाप्रभु क्या करते थे, कृष्णा 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 हे। आप चैतन्य चरितामृत उठा के देख लीजिए पूरा ग्रंथ, कहीं महाप्रभु ने बोला हो राधे राधे करके, है कि नहीं। और महाप्रभु क्या बोल रहे हैं, आपनी आचारी प्रभु जीवे रे सिखाए, अपने आचरण के द्वारा महाप्रभु ने सिखाया किस तरह से कलयुग में हमें भक्ति करनी चाहिए। तो महाप्रभु या तो कृष्ण कृष्ण बोलते थे या वो हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते थे, लेकिन राधे राधे करके अकेले कभी नहीं उन्होंने कीर्तन किया। हाँ, जब वो गोपियों के भाव में थे या राधाणी के गोपियों के भाव में, तो गोपी को कृष्ण के भाव में थे तो वो गोपी गोपी करके पुकार रहे। नवदीप में एक घटना है, जब वो कृष्ण के भाव में थे तो वो गोपी गोपी करके पुकार रहे थे। लेकिन अधिकांश अगर आप देखेंगे पूरे ग्रंथ में, चैतन्य चरितामृत में देखेंगे तो आपको कहीं नहीं मिलेगा, और चैतन्य भागवत में भी नहीं मिलेगा। महाप्रभु के लिए जो लिखी जितने ग्रंथ है, प्रमाणिक ग्रंथ है, उसमें कहीं ऐसा नहीं मिलेगा। हर जगह ये मिलेगा कि क्या चैतन्य महाप्रभु या तो कृष्ण का नाम ले रहे हैं अकेले, या फिर वो हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर रहे हैं। तो प्रभुपाद ने जो संस्था की स्थापना की, जो नाम दिया है अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावना अमृत संघ, ऐसा कहने से, जैसे श्रील प्रभुपाद कहते हैं बार बार अपने पूरे प्रचार के आंदोलन के में, प्रचार के दौरान प्रभुपाद ने क्या बोला, किस बात पर जोर दिया, कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, है कि नहीं। प्रभुपाद हमेशा कृष्ण के शब्दों पर ज्यादा जोर देते थे, और अपने पुस्तकों में भी देखिए प्रभुपाद की पुस्तकों में कि बार बार कृष्ण नाम का उच्चारण कर रहे हैं। जो बार बार कृष्ण का नाम उच्चारण करता है उसको कृष्ण वर्णम कहा गया है, ऐसा श्रील जी गोस्वामी कह रहे हैं। और चैतन्य महाप्रभु बार बार कृष्ण के नामों का उच्चारण करते हैं, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधशा। किसकी आराधना करेंगे कलयुग में लोग, किसकी पूजा करेंगे, किसके साथ संकीर्तन करेंगे, चैतन्य महाप्रभु जो कि कृष्ण वर्ण है। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण वर्ण है, श्रील जी गोस्वामी कहते हैं क्यों कृष्ण वर्ण है चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि बार बार वो कृष्ण का नाम लेते हैं। और प्रभुपाद भी बार बार कृष्ण का नाम लेते हैं, तो हमें भी बार बार कृष्ण का नाम लेना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे राधारानी प्रसन्न हो जाएंगे। जब हम कृष्ण का नाम लेंगे तो राधारानी प्रसन्न हो जाएंगे, और राधारानी जब प्रसन्न हो जाएंगे तो कृष्ण को प्रसन्न होना ही होगा। तो ये हमारा सिद्धांत है। तो हम कभी भी कृष्ण का नाम अकेले नहीं पुकारते हैं या राधारानी का नाम अकेले नहीं पुकारते हैं, यानी कंप्लीट क्या है हमारे लिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो इसलिए हम देखते हैं कि कहीं भी आप देखेंगे कृष्ण के नाम के साथ श्री शब्द जुड़ा होगा, श्री कृष्ण, है ना। तो इस तरह से श्रीमद भागवतम श्री भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच भगवत गीता में लिखा है, व्यासदेव जी लिख रहे हैं श्रीमद भागवत में, महात्मा नास्तु महापार्थ दैवीं प्रकृति माश्रिता भजंती अनन्य मनसो ज्ञात्वा मां भूतादि अभ्यं। महात्मा तो देवी प्रकृति का आश्रय लेते हैं। देवी प्रकृति कौन है, श्रीमती राधा रानी, उनका आश्रय लेते हैं। और जो असुर लोग हैं, असुरीम भावम आश्रिता, असुरीम भावम आश्रिता, वो कभी शरणागत नहीं होते। तो इसलिए राधाष्टमी बहुत नजदीक है, और हम सबको प्रार्थना करनी चाहिए कि राधा रानी से हम प्रार्थना करें कि हमें क्या मिले, कृष्ण की सेवा प्राप्त हो, और आपकी भी सेवा प्राप्त हो, आप दोनों की सेवा प्राप्त हो। और ये सेवा तभी प्राप्त होगी जब हम गुरु परंपरा से बहुत गंभीरता से जुड़े होंगे, बहुत गंभीरता से जुड़े होंगे। कलयुग में राधा कृष्ण की पूजा करना या सेवा करना लगभग असंभव है, लेकिन जब कृष्ण वही कृष्ण महाप्रभु के रूप में आते हैं तब संभव हो जाता है। महाप्रभु के माध्यम से हम राधा कृष्ण की सेवा कर सकते हैं कलयुग में, अन्यथा संभव है। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है, चैतन्य महाप्रभु के जो आश्रय में है, चैतन्य महाप्रभु के जो अनुगत्य में है, वो जल्द ही बहुत जल्द प्राप्त करते हैं कृष्ण प्रेम महाप्रभु की कृपा से। तो इसलिए गुरु परंपरा के बहुत नजदीक हम लोग रहें तो हमें षट गोस्वामियों की कृपा मिलेगी, फिर उसके बाद पंच तत्व की कृपा मिलेगी, तब हमें ब्रज में प्रवेश करने का अवसर प्राप्त होगा। तो प्रथम हमारे लिए शिक्षा यही है कि सबसे पहले हम गुरु के नजदीक रहें, आचार्य उपासना, आचार्य उपासना। तो इस प्रकार श्रीमती राधारानी की कृपा जो है अवतरित होगी। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न किसी का? नहीं, जो ब्रज के भक्त हैं वो राधा रानी का नाम उच्चारण करते हैं, हमारा कहने का भाव ये था कि कई बार लोग जो है भावुकता में राधे राधे करते हैं और कृष्ण को बिल्कुल साइड कर देते हैं, ले असली सिद्धांत को नहीं समझते हैं। यहाँ तक ब्रजवासियों का कहना है, ब्रजवासियों की बात है, राधारानी के लिए विशेष प्रेम तो है ही, लेकिन कृष्ण के लिए कोई कम प्रेम नहीं है उनका, है कि नहीं। और असली जो ब्रजवासी हैं और जो भक्त हैं प्रमाणिक परंपरा में है, जिनका सिद्धांत स्पष्ट है, अगर वो राधारानी की सेवा करेंगे तो साथ में कृष्ण की सेवा भी करेंगे, कभी अलग सेवा नहीं करेंगे। इसलिए प्रभुपाल ने राधा कृष्ण दोनों की स्थापना की एक साथ, उनको कभी अलग किया ही नहीं जा सकता है। सूर्य को सूर्य की कांति से अलग नहीं कर सकते आप, ये संभव ही नहीं है, ये संभव है ही नहीं, ये केवल विचार है। जब एक हो जाते हैं तो महाप्रभु हैं, जब एक नहीं है तो राधा कृष्ण है, सरल सी बात।
क्या प्रश्न है?
माँ के रूप में तो वो तो है ही, लेकिन हाँ माँ का नहीं, स्वामिनी के रूप में, मिस्ट्रेस, मास्टर एंड मिस्ट्रेस, कृष्णा इज अ मास्टर एंड राधारानी इज अ मिस्ट्रेस, लेकिन उनकी सेवा प्राप्त करना इतना आसान थोड़ा है कि नहीं। किसके ऊपर कृपा कटाक्ष हो जाए श्रीमती राधारानी की, हमें क्या पता, इट्स नॉट सो इजी। राधारानी कभी किसी को सीधा नहीं देखते, डीडी फॉर्म में सिर्फ देख रहे हैं बस, गोपियों को या मंजरियों को या श्री कृष्ण को भी वो कभी सीधे नहीं देखते हैं, कटाक्ष। वो कटाक्ष क्या है? कृपा कटाक्ष, साइड लॉन्ग ग्लैंस। लेकिन जब कृष्ण की बड़ी प्रबल इच्छा हुई तो एक बार आप पूरा दर्शन दें हमें, तो फिर क्या कृष्ण की हालत हुई? चैतन्य महाप्रभु की जो दिखाया, महाप्रभु ने जो दिखाया जगन्नाथपुरी में अंतलीला में, अंतलीला में देखा आपने महाप्रभु के साथ क्या हो रहा है, तो वो श्रीमती राधारानी के महाभाव को नहीं संभाल पाए, तो वो हालत हो गई। तो इसलिए राधारानी कभी सीधा नहीं देखे, साइड लॉन्ग ग्लैंस। हाँ जी, आचार्य उपासनम का प्रश्न उत्तर ये है, उसका अर्थ ये है कि उपासनम आसन के निकट बैठना, एक अर्थ ये भी होता है, लेकिन इसका अर्थ वास्तव में ये नहीं, इसका अर्थ ये है कि उनकी शिक्षाओं के नजदीक रहना, उनके वाणी के नजदीक रहना, इसका अर्थ ये आचार्य उपासना, बिल्कुल नजदीक रहना। अगर राधास्वामी का लेक्चर सुनेंगे प्रभुपाद जी का, तो प्रभुपाद वहां पर भी फिलॉसफी डिस्कस कर रहे हैं, बिल्कुल स्ट्रिक्ट दाम, नो लीला डिस्कशन, नथिंग डूइंग, बिल्कुल फिलॉसफी। उसमें भी प्रभुपाद शरीर और आत्मा की बात करेंगे राधाष्टमी के दिन भी, और बोलेंगे भी तो तीन चार लाइन बहुत संक्षिप्त रूप में बोलेंगे। श्रीमती राधारानी द सोर्स ऑफ स्पिरिचुअल इंस्पिरेशन, है ना, और या बोलेंगे प्रभुपाद बोलेंगे श्रीमती राधारानी शी इज मदन मोहन मोहिनी, है ना, जो मदन मोहन को भी मोहित कर दें, ज्यादा नहीं बता रहे प्रभुपाद। और श्रील प्रभुपाद के उनके पिताश्री जो उनके घर में संत लोग आते थे, साधु लोग आते थे, बोलते आप सब आशीर्वाद दीजिए, मेरे लड़के को आशीर्वाद दीजिए कि एक दिन ये श्रीमती राधारानी का भक्त बने। और जितने राधा कृष्ण के विग्रह श्रील प्रभुपाद ने स्थापित किए हैं पूरे पृथ्वी में, आज तक किसी ने नहीं किया। किसी ने किया है? किसी ने नहीं किया। 108 विग्रहों की स्थापना, जिसमें गौरताय के विग्रह भी हैं, लेकिन राधा कृष्ण के विग्रह इतनी मात्रा में किसी ने नहीं किए, और उनके शिष्य आगे बढ़ा रहे हैं। प्रभुपाद कहते हैं सारे विग्रह थे पहले से, लेकिन अब सिर्फ केवल मैनिफेस्ट हो रहे हैं, प्रकट हो रहे हैं। हाँ, यस, देयर इज नो डिफरेंस, द पर्सन इज सेम। इन्होंने कहा कि आपने कहा नंद नंदन कृष्ण की हमें सेवा करना चाहिए, उनका हमें उनके उनमें हमें चित्त लगाना चाहिए, मन लगाना चाहिए, लेकिन प्रभुपाद ये कह रहे हैं कि कोई डिफरेंस नहीं है, वेदर इज इन द्वारका और वेदर इज इन वृंदावन, यही बोला ना आपने कि उनमें कोई डिफरेंस नहीं। हाँ, कोई डिफरेंस नहीं है, फंक्शन में डिफरेंस, फंक्शन में डिफरेंस है। एक व्यक्ति कोर्ट में जाता है जज बनता है, घर में आता है तो बहुत सारे रिश्ते हैं उसके, द पर्सन इज सेम बट द फंक्शन इज डिफरेंट। फंक्शन का महत्व होता है ना, पर्सन तो ठीक है लेकिन फंक्शन का ज्यादा महत्व है, भाव की ज्यादा प्रधानता है। लेकिन द्वारका कृष्ण नेवर प्लेस फ्लूट, देर नो मोर पंख इन द्वारका. वेणु माधुर्य केवल वृंदावन में है कि नहीं. सो क्या होता है इसका एक और तरीका समझाने का, जस्ट लाइक फुल मून, पूर्णिमा का चांद, आप उनको अलग अलग कलाओं में देखते हैं. तो जिस दिन आप पूर्णिमा का चांद देखते हैं, दैट इज कृष्णा इन वृंदावन, और जब अलग अलग कलाओं में देखेंगे, दैट इज कृष्णा इन मथुरा इन द्वारका. तो चंद्रमा इसका मतलब ये नहीं कि काट दिया है, पीसेस कर दिए हैं, है ना, लेकिन वो पूरी तरह से प्रकाश प्रकाशित नहीं हो रहा है, मैनिफेस्ट नहीं कर रहा है. नहीं, कृष्ण बड़े हैं, राधा रानी छोटे हैं. हाँ, वो भी लिखा गया है. देखिए, कई बार इस प्रकार का वर्णन आता है, वो कल्प भेद में होता है. जैसे अगर आप राधा रानी के जन्म के बारे में पढ़ेंगे, अगर रूप गोस्वामी के द्वारा जो लिखा है वो अलग होगा, आप गर्ग संहिता में पढ़ेंगे वहां पर अलग दिया हुआ. तो ये कल्प भेद है, यानी कि राधा रानी एक बार तो नहीं आते हैं, या कृष्ण पहली बार तो नहीं आए, पिछले द्वापर में इससे पहले भी आए हैं. तो कई बार कई कल्पों की कथाएं भी दी जाती हैं पुराणों में. तो कुछ पुराणों में कुछ लिखा होता है, कुछ पुराणों में कुछ और दिया होता है, वो सब ठीक है, लेकिन अलग अलग कल्प में घटनाएं होती हैं, इस कारण से भेद हो जाता है. तो ये अचिंता भेद अभेद तत्व भी है, साइमल्टेनियसली वन एंड डिफरेंट. कृष्णा एंड द्वारका और वृंदावन, दे आर वन, एट सेम टाइम दे आर डिफरेंट, वन एंड डिफरेंट है कि नहीं. तो अचिंत भेद अभेद तत्व सिद्धांत आपको हर जगह मिलेगा. दैट स्टार्ट्स विद कृष्णा, हिज फिलॉसफी स्टार्ट्स विद कृष्णा, वन एंड डिफरेंट. राधाणी ऑल्सो एक्सपैंड, कृष्णा इज एक्सपैंडिंग, राधाणी ऑल्सो एक्सपैंड, शी ऑल्सो गोज आउट ऑफ वृंदावन, बट नॉट दी राधाणी ऑफ वृंदावन. देर आर एक्सपेंशन ऑफ श्रीपति राधाराणी ऑल्सो, दैट वियोगिनी राधाराणी, वियोगिनी राधाराणी शी कीप्स ऑन वॉन्डरिंग द 12 फॉरेस्ट ऑफ ब्रज सर्चिंग फॉर कृष्णा, बिकॉज कृष्णा इज गॉन टू मथुरा विथ अक्रूर. तो दैट राधाराणी इज वियोगिनी राधाराणी. राधा रानी हुज ऑलवेज इन द पास्ट टाइम विद कृष्णा, एट फोल्ड पास्ट टाइम्स अष्टकाली लीला में रहती हैं जो राधा रानी, वो मूल राधा रानी है. एंड राधा रानी हु गोज टू कुरुक्षेत्र टू मीट कृष्ण, नॉट टू मीट कृष्णा बट ऑन द डे ऑफ सूर्य ग्रहण, बट समाउ शी एंड ब्रजवासी ऑल्सो, दे ऑल्सो मीट कृष्णा. सो दैट राधा रानी इज संयोगिनी राधा रानी. सो इन दिस सेम वे चैतन्य महाप्रभु इज ऑल्सो मैनिफेस्टिंग इन डिफरेंट फीचर्स. सो वी वर्शिप निमाई ऑफ नवदीप, इज इट नॉट. आपने ऑल्टर में देखो ध्यान से, केश धारण किया हुआ है निमाई ने, संन्यास वेश तो नहीं है. संन्यास वेश की पूजा करते हैं हम नहीं. सो दैट इज निमाई ऑफ नवदीप, वी वर्शिप निमाई ऑफ नवदीप. निमाई एंड निताई, दे आर वेरी वेरी स्वीट, माधुर्य औदार्य. So when he goes out of Navdeep, he goes to Jagannath Puri, which is like Kurukshetra or Dwarka. So that is Mahaprabhu exhibiting the bhav of Samyogini Radharani. When Mahaprabhu is wandering all over India, Krishna, 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 hey, that is Vyogini Radharani. Same Mahaprabhu, but in different features, because of different functions. Person is same, the function is different. और function जब different हो जाता है तो फिर कई चीजें different हो जाती हैं. भाव भी अलग प्रकट करना पड़ता है, सेवाएं भी अलग अलग होती हैं, moods भी अलग exhibit करते हैं, तो उनका ज्यादा प्रभाव रहता है ना, इस वजह से. जगन्नाथ जी वहां पर अकेले नहीं है, साथ में योग माया शक्ति है सुभद्रा जी. मतलब कहने का मतलब है कि कृष्ण कभी भी बिना अंतरंगा शक्ति के होंगे नहीं. जिस रथ पे जगन्नाथ जी बैठते हैं, उस रथ का जो पहिया है उसमें 16 स्पोक्स होते हैं. स्पोक्स जानते हैं, वो जो पहिया होता है ना, उस बीच में जो डंडे होते हैं, साइकिल में भी देखा हो आपने, तो पहिए में स्पोक्स होते हैं, ऐसे 16 स्पोक्स हैं. तो इस प्रकार वर्णन मिलता है हमारे शास्त्रों में, ये शायद सनत कुमार संहिता में है, जिसमें दिया है 16 प्रकार की एनर्जीज बताई, अंतरंगा शक्ति. वहां पे इंटरनल एनर्जीज 16 टाइप्स ऑफ इंटरनल एनर्जीज बताए हैं. तो ये इंटरनल एनर्जीज जो 16 स्पोक्स हैं, वो सारी अंतरंगा शक्ति हैं. तो जब तक वो अंतरंग शक्तियां नहीं होंगी 16 तो जगन्नाथ जी अपनी लीला नहीं कर पाए, यानी कि अपने अंतरंग शक्ति के साथ ही वो लीला करते हैं, बिना उसकी लीला नहीं कर सकते। गिरिराज को धारण किया कृष्ण ने, वो किसको देख रहे हैं? राधारानी को देख रहे। तो राधारानी जब तक नहीं है तब तक गिरिराज को धारण नहीं करेंगे। अब बात है कि इंटरनल पोटेंशियल, कहने का मतलब है कि अंतरंगा शक्ति, अंतरंगा शक्ति, और अंतरंगा शक्ति में लादनी शक्ति भी आ जाती है। लादनी शक्ति स्वरूप राधारानी के रूप में ना आए, बट वो शक्ति जरूर है। जैसे लादनी शक्ति की कृपा हमें भी मिलती है, जीवात्मा भी सच्चिदानंद है, तो आनंद जो पोटेंसी है वो लादनी शक्ति से आ रही है। ठीक है, हरे कृष्ण। श्रीमती राधारानी आविर्भाव तिथि महोत्सव की, राधाष्टमी की, ललिता सखी आविर्भाव तिथि महोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की, तमवेद भक्त वृंद की, बहुत प्रेम।